Hi, this is Vivek Kumar, BA Part 2, Faculty of Social Sciences. अब मैं जा रहा हूँ रिकॉर्ड करने प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास डॉक्टर जयशंकर मिश्र के द्वारा लिखित का अगला अध्याय, दूसरा अध्याय, सामाजिक विभाजन और सामाजिक संस्थाएं। भारतीय हिंदू समाज जातियों के अनेक समूहों और वर्गों में विभक्त है, जो अपने प्रतिष्ठा अनुसार पारस्परिक सामाजिक आचार विचार, रहन सहन और व्यवहार में भी पृथक हैं। सभी जातियों के अपने भिन्न भिन्न व्यवहार और लक्षण हैं, जिनसे उनकी अपनी विशेषता, गुणात्मकता और निजत्व का पता चलता है। वस्तुतः भारतीय जाति व्यवस्था सामाजिक संगठन का अत्यंत सामान्य रूप है, जिसके माध्यम से उसका विकास प्रकृतितः हुआ है। प्राचीनकालीन भारतीय समाज विभिन्न समूहों में था, जिनकी अपनी विशिष्टताएं थी। ये विभिन्न समूह ही कालांतर में जातियों के रूप में विकसित हुए। जातियों के उन्नयन के साथ साथ अनेक सामाजिक संस्थाओं का भी निर्माण हुआ, जो भारतीय जीवन की विधियों को व्यक्त करती हैं। भारतीय आचार विचार, रीति रिवाज, ज्ञान दर्शन आदि का पता सामाजिक विभाजन से ही लगता है। बाद में बनने वाली अनेकानेक भारतीय सामाजिक संस्थाएं जीवन को उद्घाटित करने की मूल प्रेरक तत्व बनी। धीरे धीरे जीवन के विविध पक्षों से संबंधित सामाजिक संस्थाओं का गठन और विकास प्रारंभ हुआ, जिसने अपने विभिन्न नियमों और निषेधों से समाज को पूर्णता प्रदान की तथा विकास की ओर अग्रसर किया। वस्तुतः मानव जीवन की अभीष्ट की प्राप्ति में उसकी क्रियाशीलता का सर्वाधिक महत्व है, जो उसके आदर्श और व्यवहार को संपुष्ट करती है। भारतीय समाज अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण विश्व के अन्य समाजों से अलग है। अन्य समाजों की तुलना में भारतीय समाज की अपनी अलग विशिष्टताएं हैं, जो अपेक्षाकृत बाह्य कानून, नीतियों और बंधनों पर बहुत कम निर्भर करती हैं। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा एक दूसरे पर दबाव और अत्याचार को रोकने के लिए भारत में बहुत कम नियम बने। वस्तुतः व्यक्ति के माध्यम से अनेक ऐसे संनियम, सदाचरण और प्रथा परंपरा का सन्निवेश हुआ कि उस समाज का प्रत्येक सदस्य सच्चरित्र और उत्कृष्ट बना। फलतः समाज का विकास व्यवस्था अनुसार योजनाबद्ध स्वाभाविक गति से हुआ है, और उसका विभाजन भी समाज में व्यष्टि और समष्टि की महत्ता बढ़ाने पर पारस्परिक आवश्यकताओं का भी महत्व बढ़ा, जिससे परिवार, समुदाय और समाज का उत्थान हुआ। वस्तुतः मनुष्य की कुछ ऐसी आवश्यकताएं होती हैं, जिनका समाज के सभी सदस्यों के लिए समान महत्व होता है। ये आवश्यकताएं सामाजिक जीवन की मौलिक आवश्यकताएं होती हैं, जो जन समुदाय के कल्याण और उत्थान के लिए लाभकारी और हितकारी होती हैं। इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक विभाजन का प्रत्येक जातिगत सदस्य कुछ कार्य प्रणाली, तरीका अथवा साधन खोज लेता है, जिसे वह सामाजिक उत्थान में लगाता है अथवा अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति में न्यस्त करता है। फलतः समाज व्यक्ति द्वारा अपनाए गए साधनों और कार्य व्यवस्थाओं को स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार भारतीय सामाजिक संस्थाओं में उन कार्य विधियों, सांस्कृतिक उपकरणों, व्यवहारों तथा क्रियाओं का योग होता है, जो सामाजिक विभाजन के स्वरूप को व्यक्त करने में सफल होती हैं। सामाजिक विभाजन का आधार तत्व। सामाजिक विभाजन के फलस्वरूप जो सामाजिक संस्थाएं बनी, उनमें ऐसी अनेकानेक विशेषताएं रही हैं जो हिंदू समाज के आधार तत्व थे। भारतीय समाज के सांस्कृतिक जीवन को क्रियाशील और विकासशील करने में इन विशेषताओं का महत्वपूर्ण योग रहा है। संस्कृति की प्राचीनता। भारतीय इतिहास और संस्कृति का आधार अत्यधिक प्राचीन है। देश की सामाजिक संस्थाएं इसी प्राचीनता के योग से पल्लवित और पुष्पित हुई हैं। इनके विकास क्रम का इतिहास सहस्त्र वर्षों का है, जिसमें अनेक सामाजिक तत्वों का योग है। वैदिक युग से ही भारत की सभ्यता और संस्कृति उन्नतिशील रही है। अनेकानेक भारतीय सामाजिक संस्थाओं का विकास वैदिक युग में ही हो गया था। वर्ण संस्था, आश्रम संस्था, विवाह संस्था आदि ऐसी अनेक सामाजिक संस्थाओं का उद्भव ही नहीं, बल्कि उत्थान भी वैदिक युग के परवर्ती काल से प्रारंभ हो गया था। वैदिक युग के पश्चात तो जाति संस्था अत्यधिक विकसित होकर सामने आ गई तथा इसके अंतर्गत अनेक व्यवसाय परक जातियों का भी प्रसार हुआ। सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ आर्थिक, धार्मिक आदि विभिन्न संस्थाओं का भी उन्नयन हुआ। भारतीय सामाजिक संस्थाओं का उदय और विकास ऐसे समय में हुआ जब विश्व के अनेक देश कई दृष्टियों से अनुन्नत और असभ्य थे। उनमें भारत जैसी योजनाबद्ध, व्यवस्थित और सुगठित सामाजिक संस्थाएं नहीं थी। भारतीय सामाजिक संस्थाएं वैज्ञानिक आधार पर सुचारू रूप से जीवन में क्रियाशील थी, अतः सामाजिक संस्थाओं में संस्कृति की प्राचीनता भी उनकी अपनी विशेषता रही है। संस्कृति की अक्षुण्णता अथवा स्थायित्व। भारतीय सामाजिक संस्थाएं जो अत्यंत प्राचीन काल में थी वे आज भी हैं। उनके आधार तत्व में किसी प्रकार का मूलभूत परिवर्तन नहीं आया है। उनकी अक्षुण्णता पूर्ववत बनी हुई है, यद्यपि इस बीच समय समय पर अनेकानेक विदेशियों के अभियान हुए जिन्होंने देश को बार बार पदाक्रांत और अशांत किया तथा अपना शासन स्थापित किया। छठी सदी ईसा पूर्व से लेकर 12वीं सदी तक विभिन्न विदेशी जातियों ने भारत पर आक्रमण किया तथा अपनी शक्ति और क्रूरता के बल पर स्थानीय संगठनों को तोड़ने का सबल उपक्रम भी किया। इनमें पारसिक, यूनानी, यूनानी बाख्ती, शक, पल्लव, कुषाण, हून और मुसलमान जैसी विदेशी जातियां प्रमुख हैं जिन्होंने यहां अपना राज्य स्थापित किया तथा सदियों तक शासन किया। इन विदेशी आक्रामक जातियों के कारण हिंदू सामाजिक संस्थाओं को अनेक बार धक्के लगे, किंतु उन्होंने दृढ़तापूर्वक अपना स्थायित्व बनाए रखा। इन विदेशी शासनों के फलस्वरूप देश में सम्मिश्रण की संभावना भी हुई तथा सामाजिक संस्थाओं के टूटने का भी भय, किंतु भारतीय सामाजिक संस्थाओं की जड़ें इतनी गहरी थी कि उनका उखड़ पाना असंभव था। वस्तुतः भारतीय संस्कृति की यह मूलभूत विशेषता थी कि उसने अपने को अक्षुण्ण और अटूट बनाए रखा। विभिन्न शताब्दियों में होने वाले परिवर्तन और परिवर्धन हिंदू संस्कृति के अंग बन गए, किंतु भारतीय सामाजिक संस्थाओं का आधार तत्व वही बना रहा जो वैदिक युग में था। जितने आक्रमण भारत पर हुए तथा जितनी जातियां भारत में आई उतनी विश्व के किसी अन्य देश में नहीं। अगर किसी अन्य देश में इतनी आक्रामक जातियां आई होती और प्रतिकूल घटनाएं घटी होती तो उस देश की सामाजिक व्यवस्था कभी की टूट गई होती तथा सांस्कृतिक जीवन कभी का समाप्त हो गया होता। इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय सामाजिक स्थिति ने अपना अस्तित्व और निजत्व बनाए रखा, उसे नहीं खोया, यह उसकी अपनी विशेषता है। जबकि ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण मिस्र, बेबीलोन, निनवे, सुमेर, रोम, ग्रीस आदि विश्व के विख्यात देशों की उन्नतिशील सभ्यताएं कराल काल के गाल में चली गई तथा उनका वह सांस्कृतिक वैभव और ऐश्वर्य नष्ट होकर रह गया। फलतः उक्त देशों की आधुनिक सभ्यता और प्राचीन सभ्यता में बहुत अंतर है जो उनके आज के समाज से मेल नहीं खाती, किंतु इसके विपरीत भारतीय सभ्यता और संस्कृति का आधार तत्व वही है जो प्राचीन काल में था। आज उन सामाजिक संस्थाओं का वही स्वरूप है जो उनका भारत के अतीत काल में था। सहिष्णुता अथवा सद्भावना। भारतीय सामाजिक संस्थाओं में सदाशयता, सद्भावना और सहिष्णुता निरंतर रही है। यही विशिष्टता प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति की प्रधान प्रेरणा रही है। व्यक्ति का एक दूसरे के प्रति सहिष्णु होना तथा परिवार और समाज के प्रति सहिष्णुता का व्यवहार करना हिंदू सामाजिक दर्शन का मुख्य प्रेरक तत्व रहा है। प्राचीन काल में जितने भी विधर्मी भारत में आए उन सब के साथ भारतीयों ने अपनी संस्कृति के अनुरूप सद्भावना और सौदास्यता का परिचय दिया, जबकि इसके विपरीत जो विदेशी विधर्मी भारत में आए उन्होंने यहाँ के लोगों के साथ असहिष्णुता, निरीशंसता, क्रूरता और अमानवता का व्यवहार किया। उनकी इस तरह की असहिष्णुता और बर्बर क्रियाकलापों से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में तो भारतीयों की अनेक विपत्तियों और अत्याचारों का सामना करना पड़ा है। ऐसे संघर्ष में उन्होंने तनिक भी व्यथा नहीं की अपितु अभूतपूर्व वीरता और साहस के साथ विदेशियों के अत्याचारों को सहन किया। ऐसी सहनशीलता और धैर्य की शक्ति विरल है। इतिहास साक्षी है कि भारतीयों ने इस प्रकार के क्रूर अत्याचार किसी अन्य धर्मावलंबियों पर नहीं किए और न किसी दूसरे समाज को आतंकित और कलंकित करने का दुस्साहस ही किया। वस्तुतः भारतीय सामाजिक आदर्श का आधार था धर्म, जो न दूसरे को आघात पहुंचाता था और न किसी का विरोध करता था। इसी विचार के अनुसार मनुष्य अपने जीवन में व्यवहार करता था। सद्भावना और सहिष्णुता प्रत्येक व्यक्ति का आदर्श था। व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म और समुदाय का प्राणी क्यों न रहा हो, भारतीय आदर्श यह था कि सभी जीवों में ईश्वर का वास रहता है, इसलिए सहिष्णुता और सदास्यता का आचरण करना प्रत्येक व्यक्ति का परम कर्तव्य है। इसमें भेदभाव और ऊंच नीच की भावना का भी प्रवेश नहीं था। सद्भावना ही प्रधान थी। मन, वचन और कर्म से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना तथा सभी के साथ यथार्थ और प्रिय संभाषण करना, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न करना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग करना, अंतःकरण की उपरामता अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा आदि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया दर्शित करना, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर आसक्ति का न होना, कोमलता तथा लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव आदि मनुष्य की सद्भावना के अंतर्गत आने वाले गुणात्मक व्यवहार थे। संस्कृति में आत्मसात की क्षमता। प्राचीन भारतीय संस्कृति का विस्तार बहुत बड़ा था। उनकी सामाजिक संस्थाएं बंधनहीन और उन्मुक्त थी। उसके सदस्यों में ग्रहण करने की अपार क्षमता थी। समय और परिस्थिति के अनुसार वे अपने को तदनुकूल कर लेते थे। फलस्वरूप समय अनुसार भारतीय समाज के आदर्शों, व्यवहारों, नियमों, सामाजिक विचारों आदि में परिवर्तन होते रहे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवीन आदर्शों और आचारों का आकलन हुआ। पूर्व वैदिक युग से लेकर 12वीं सदी तक देश में होने वाले विविध परिवर्तनों का समावेश भारतीय संस्कृति में हुआ है। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति जो पूर्व वैदिक युग में थी, समयानुसार उनमें विभिन्न परिवर्तन होते रहे। पूर्व वैदिक शासक और शासन कालांतर में आकर और संगठित हो गए। उनके कर्तव्यों और नियमों में वृद्धि हुई। ऋग्वैदिक युगीन समाजवाद बाद में नवीन घटनाओं और परिस्थितियों के कारण अत्यधिक विस्तृत और व्यवस्थित हुआ। परिणाम स्वरूप विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का निर्माण हुआ। पूर्व वैदिक काल का धर्म निर्माण की स्थिति में था, जो उत्तर काल में अत्यंत विकसित हुआ। विभिन्न धार्मिक संस्थाएं अनेकानेक शाखाओं और समुदायों में प्रस्फुटित हुई। प्रारंभिक वेदकालीन आर्थिक जीवन परवर्ती काल में अत्यधिक उन्नत और पुष्ट हुआ। भारतीय संस्कृति में आत्मसात और ग्रहण करने की क्षमता इतनी प्रबल थी कि समाज में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को वह स्वीकार करती चलती थी। उदाहरण के लिए समाज में सबसे पहले आदिम जातियों के दो समूह थे, आर्य और अनार्य, या असभ्य अथवा दस्यु, जो परवर्ती युग में आकर वर्णगत चार समूहों में विभाजित हुए। इस प्रकार समय और परिस्थिति के अनुसार भारतीय समाज में निरंतर ग्रहण करने का भाव चलता रहा और उसी आधार पर उनका विकास होता रहा। आज भारतीय समाज में कितनी जनजातियां और उपजातियां हैं, इनका पता पाना असंभव सा है। सामाजिक संस्था के अंतर्गत विवाह संस्था में भी अनेक परिवर्तन हुए तथा अनेक नई विवाह प्रणालियों को भारतीय सामाजिक व्यवस्था में स्थान दिया गया। पूर्व वैदिक युग में 8 प्रकार के विवाह नहीं थे। इसका वर्गीकरण उत्तर काल में हुआ। विवाह संबंधी विभिन्न नियमों का निवेशन समय समय पर होता रहा। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के संस्कारों का भी प्रचलन हुआ। आदि वैदिक युग में संस्कारों का कोई अस्तित्व नहीं था। उत्तर वैदिक काल में आकर इसका बीजारोपण हुआ, जो सूत्र काल में आकर संगठित हुआ। भारतीय सामाजिक संस्थाओं का यह वैविध्य उनके आत्मसात की प्रवृत्ति से ही संभव हो सका है, जिसका तारतम्य बहुत पहले से देखा जा सकता है। संस्कृति की समलव्यवादी धर्मिता। भारतीय समाज और संस्कृति की यह मुख्य विशेषता रही है कि वह दूसरी समकक्ष संस्कृति के साथ समन्वय स्थापित करती रही है। समान धर्मा अथवा असमान धर्मा वस्तुओं के साथ सम्मिलन और संयोजन की भावना ही समन्वयवादी प्रवृत्ति है। व्यक्ति के पुरुषार्थ की भावना समन्वय से संबंधित मानी गई है। भौतिक और आध्यात्मिक जीवन का सुख समन्वय पर ही आधारित रहा है। मनुष्य का विकास यही लौकिक और पारलौकिक दोनों की स्थितियों के समन्वय से ही संभव है। अनुकूल और प्रतिकूल तथा सहयोगी और विरोधी प्रवृत्तियों में समन्वय स्थापित करके चलना भारतीय संस्कृति का मूल आधार तत्व रहा है। जीव और ब्रह्मा, आत्मा और परमात्मा, लौकिक और परलौकिक, भोग और योग, कामना और साधना, ग्रहण और त्याग, गृहस्थ और संन्यास आदि समन्वय स्थापन के प्रतीक हैं। संपूर्ण जगत में समन्वय की भावना है, चाहे वह जड़ हो या चेतन। भारतीय संस्कृति की यह समन्वयवादी भावना उसके अलौकिक दर्शन पक्ष को विकसित करती है। सामाजिक संस्थाओं के जो नियम और आचार बनाए गए, उनमें भी समन्वय की भावना निहित है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत शूद्र को निम्न मानकर ब्राह्मण के लिए उसका दान न ग्रहण करने का निर्देश दिया गया, किंतु दूसरी और विशेष स्थितियों में उसका दान ग्रहण करने का विधान किया गया। विवाह संस्थाओं के अंतर्गत विवाह विहित विवाहों के अतिरिक्त गंधर्व, पैसाच, राक्षस और आसुर जैसे अविवाहित विवाहों को भी हिंदू समाज में स्थान दिया गया। विधवा के लिए दो स्थितियां तय की गई, जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य अथवा मृत पति के साथ अनवारोहण। दोनों के विकल्प में उसके लिए नियोग की भी व्यवस्था की गई, फलस्वरूप वह पुनर्भू कही गई, जबकि स्त्री के लिए पर पुरुष की कल्पना भी पाप था। आश्रम व्यवस्था पूर्ण रूपेण समन्वय की भावना पर आधारित है। एक और गृहस्थ का भोगी जीवन और दूसरी और सन्यासी का योगी जीवन समन्वय स्थापित करने के प्रबल उदाहरण हैं। यही नहीं, पुरुषार्थ की कल्पना में भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को लेकर अद्भुत समन्वय स्थापित किया गया है। संस्कृति की धार्मिकता। भारतीय संस्कृति का आधार धार्मिक प्रवृत्ति है, जिससे मनुष्य का संपूर्ण जीवन प्रभावित होता रहता है। समस्त सामाजिक व्यवस्थाएं धर्म के आधार पर ही निश्चित हुई हैं। मनुष्य का कर्म धर्म पर ही आधारित है। धर्म के बिना कर्म की कोई सार्थकता नहीं, अतः मनुष्य से संबंधित सभी कर्म धर्म समन्वित माने गए हैं। यह संभवतः इसलिए किया गया था कि मनुष्य को आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त हो सके और वह धर्म संवलित मार्ग पर चल सके। यह लौकिक और पारलौकिक दोनों को सुखी करने का एकमात्र साधन धार्मिकता थी। नैतिक और सात्विक क्रियाएं धर्म से संबंधित थी, इसीलिए मनुष्य अपने जीवन में धर्म भीरु भी बना रहता था। धार्मिक प्रवृत्ति मनुष्य को व्यक्तिगत लाभ से हटाकर सामूहिक लाभ की ओर अग्रसर करती है। इस प्रकार व्यक्ति का समष्टि की ओर झुकाव बढ़ता है तथा समाज सेवा का भाव उदित होता है। मनुष्य के संकुचित और सीमित विचार का अंत धर्ममूलक प्रवृत्तियों के आश्रय से होता है। फलतः भेदभाव और अंतरता की भावना समाप्त हो जाती है। अभेद और प्रेम समन्वित वातावरण का निर्माण होता है। यह सही है कि मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिकता का अधिक ध्यान रखा गया है, किंतु भौतिकता का मूल्य भी समझा गया है। हिंदू समाज के समस्त सामाजिक कार्यों में धर्म की बहुलता है, जो उसकी स्थिति को सुदृढ़ करने में सहायक होता है। मनुष्य के जीवन में सुख की अनुभूति धर्म के अनुगमन से होती है। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सुख की प्राप्ति धर्म से ही संभव है। विचार दृष्टि की व्यापकता। सामाजिक संस्थाओं में विचार दृष्टि की व्यापकता और प्रशस्तता उसकी अपनी देन है। मनुष्य के विचारों में स्वतंत्रता और साम्य का विशेष महत्व है। विभिन्न सामाजिक नियमों और आचारों की कठोरता को देखकर यह भी कहा गया है कि हिंदू सामाजिक संस्थाओं में बंधन है, स्वतंत्रता नहीं। किंतु ऐसी बात नहीं, समाज के सदस्य स्वतंत्रता पूर्वक निर्देशित नियमों का पालन करते रहे हैं। उनकी दृष्टि व्यापक थी, जिसमें भौतिक ऐसनाओं का उतना महत्व नहीं था जितना आध्यात्मिक मान का। हिंदू विचारकों की दृष्टि में स्त्री पुरुषों का भेद नहीं था। यह कहा गया है कि जिस स्कूल में स्त्रियों की पूजा होती है उस स्कूल पर देवता प्रसन्न होते हैं, और जिस स्कूल में इनकी पूजा नहीं होती उस स्कूल में सब कर्म निष्फल होते हैं। जिस स्कूल में जोमी घर की स्त्रियां शोक करती हैं वह कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, और जिस स्कूल में वे शोक नहीं करती वह कुल सर्वदा उन्नति करता है। तस्मादिता सदा पूज्य भूषणाच्छादनासने भूति कामेनर नृत्यम सत्कारेषु तस्वेषु च। अतः उन्नति चाहने वाले मनुष्य का यही कर्तव्य था कि वह स्त्रियों का सदा सर्वदा आदर सत्कार करता। लौकिक और भौतिक सुखों के प्रति मनुष्य की व्यापक और सुव्यवस्थित दृष्टि थी, जिसमें न आबद्धता थी और न संकुचन। जीवन का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत माना गया था। जिनका लक्ष्य आध्यात्मिक सुख था, सांसारिकता और भौतिकता के संकुचित और बंधन मुक्त क्षेत्र को आध्यात्मिक प्रवृत्तियों से विस्मृत और व्यापक बनाने की चेष्टा की गई थी। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति तभी संभव थी जब वह जीवन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण से विचार करता हुआ समस्त भौतिक उपादानों को त्याग कर आध्यात्मिकता की ओर प्रवृत्त होता था। अतः अपनी इन आधारभूत विशेषताओं के कारण सामाजिक विभाजन ने उन शाश्वत संस्थाओं को निर्मित किया जो भारतीय सामाजिक जीवन की मूल प्रेरक तत्व बनी। इन सामाजिक संस्थाओं का उन्नयन सदियों के सतत प्रयास और प्रयत्न का प्रतिफल था। इनमें जीवन की उदात्त भावनाएं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कर्म निष्पन्न करने के प्रति उत्साह, भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक सुख की आकांक्षा, त्याग और उत्सर्ग करने की अभिलाषा विभिन्न कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने की उत्कट भावना आदि सन्निविष्ट हैं। प्रत्येक व्यक्ति और जीव को समान भावना से समझने और परखने का दर्शन भारतीय सामाजिक संस्थाओं में विकसित हुआ तथा उसने मनुष्य को सन्मार्ग को दिग्दर्शन कराया। काल और समय के अनुसार होने वाले परिवर्तनों तथा जीवन मूल्यों को आत्मसात करने की अद्भुत शक्ति इन सामाजिक संस्थाओं में विद्यमान रही है। तथ्यतः समाज निर्माण में इन तत्वों ने अपना योग प्रदान कर सर्वदा जीवंतता और स्फुरण का वातावरण निर्मित किया। इस अध्याय की समाप्ति होती है। धन्यवाद।